नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 मई से 14 जून तक। इस चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना कार्य होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय टाइगर मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ कुआलालंपुर में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। और प्रदेश में दिन और रात के तापमान में काफी अंतर। सीकर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री, वहीं बाड़मेर, पाली, जालौर और जोधपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 मई से शुरू होकर 14 जून तक चलेगा। कल जयपुर में वर्चुअल रूप से आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन में ये जानकारी दी गई। पहले चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना का काम किया जाएगा। देश में पहली बार डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग करते हुए जनगणना कार्य किया जाएगा। 1 मई से 15 मई तक सभी नागरिकों को पहली बार स्वगणना का विकल्प भी मिल रहा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सटीक जनगणना विकास योजनाओं का महत्वपूर्ण आधार है। ये हमारा संवैधानिक दायित्व है। इसके आंकड़ों से ही विकास के स्तर और लक्ष्यों तक पहुंच की जानकारी मिलती है। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को राष्ट्रीय महत्व के इस काम को पूरी निगरानी और संवेदनशीलता के साथ करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जनगणना में लगे कार्मिकों के बेहतर और गहन प्रशिक्षण की बात कही, जिससे आंकड़ों का पारदर्शिता के साथ संकलन किया जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनगणना के काम का आम जन में व्यापक प्रचार प्रसार करने और लोगों से सक्रिय भागीदारी तथा सहयोग का आग्रह किया। अलवर में आज अंतर्राष्ट्रीय टाइगर मैराथन शुरू हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता रणदीप हुड्डा ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन में 8 देशों के 18,000 से अधिक धावक भाग ले रहे हैं। 4 श्रेणियों में होने वाली ये मैराथन प्रताप ऑडिटोरियम से रवाना हुई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, जिससे धावकों में जोश भर गया। मीडिया से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि मैराथन का आयोजन वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।
पूरे देश से नहीं, पूरे दुनिया से लोग आए। मैं तो गेम्स के प्रति एक उत्साह देख करके बड़ा अचंभित। कुछ लोग तो रात भर बाहर रुके हैं, लेकिन जो उत्साह है वो ये बताता है कि हमारे देश में खेलों के प्रति बहुत उत्साह है, नेचर के प्रति उत्साह है। और ये एक बड़ा अवेयरनेस मूवमेंट और समाज के एक जागरण का कार्यक्रम है, जिसको सब लोग साथ दे रहे हैं। हाँ, और बल्कि कल एक और अच्छा काम हम लोगों ने बर्ड वॉचिंग का भी करा है। और क्योंकि हमारे जो सिलीसेड है वहाँ दुनिया भर के प्रवासी पक्षी आते हैं, तो अलवर के जो एक पर्यावरण का अलवर का वैल्यू है उसको आगे बढ़ाने में ये निश्चित रूप से सहायक होगा और अलवर के टूरिज्म को बढ़ाने में सहायक होगा।
मुख्यमंत्री श्री शर्मा अलवर दौरे में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वे रामगढ़ पंचायत समिति के बहाला गांव में ग्राम उत्थान शिविर का जायजा लेंगे। इसके बाद श्री शर्मा जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री का दोपहर में खैरथल तिजारा के बगेरी कला जाने का कार्यक्रम है। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा कल कोटपूतली पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-2027 तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों लाभ देने वाला है। सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इसके साथ ही सेवा क्षेत्र के माध्यम से भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
भारत सरकार ने एक दीर्घकालिक सोच का बजट पेश किया, जिसके आने वाले 5-7 साल में इतने बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आजादी के 100 साल जब 2047 में पूरे हों, उससे पहले पहले भारत दुनिया का सबसे आत्मनिर्भर, सबसे विकसित, सबसे सबल, सबसे सशक्त और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाए। भारत में सेमीकंडक्टर और चिप का निर्माण हो, इसको प्रोत्साहन देने का प्रयास इस बजट के माध्यम से किया है।
कोटा के तलवंडी इलाके में बीती रात एक बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 13 व्यक्ति घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज धमाके की आवाज के बाद इमारत भर भराकर गिर गई और मलबे में कई लोग दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और आपदा राहत की टीमें मौके पर पहुंची। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बताया कि तेजी से बचाव कार्य करते हुए मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया।
टोटल अभी कंफर्म नहीं कह सकते, जितने भी हैं टोटल अभी हमारे 7 लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया है, उनकी रिपोर्ट्स मिलेंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग ए पॉजिटिव थिंग। अभी तक सोफार और रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है, हमारी सारी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स और फायर की टीम्स अभी लगी हुई है, अभी ये चल रहा है।
घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घटना को दुखद बताते हुए घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मलेशिया यात्रा के दौरान कल कुआलालंपुर में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कार्यक्रम में श्री मोदी ने प्रवासी समुदाय को दोनों देशों को जोड़ने वाला जीवंत सेतु बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया ने वर्ष 2024 में अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर जोर देते हुए कहा कि 100 से अधिक भारतीय आईटी कंपनियां मलेशिया में काम कर रही है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस अवसर पर श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत का डिजिटल भुगतान मंच यूपीआई जल्दी ही मलेशिया में लॉन्च किया जाएगा। प्रवासी भारतीयों के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलों की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड की सुविधा 6ठी पीढ़ी तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने इस बात की भी घोषणा की कि भारत में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए तिरुवल्लुवर छात्रवृत्ति शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान व्यापार, आर्थिक सहयोग, रणनीतिक जुड़ाव और अन्य क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। एनीमिया मुक्त भारत के तहत किशोरों, बालिकाओं और महिलाओं में खून की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत गर्भवती और धात्री महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उनकी खून की नियमित जांच की जा रही है। इसी कड़ी में करौली जिले के चिकित्सा संस्थानों में गर्भवती और धात्री महिलाओं की स्वास्थ्य जाँच कर उन्हें FCM के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं।
करौली जिले में स्वास्थ्य विभाग के मिशन FCM ने गर्भवती व धात्री महिलाओं के जीवन में नई उम्मीद जगाई है। इसके माध्यम से गंभीर एनीमिया से जूझ रही महिलाओं को अब फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन के जरिए तेजी से राहत मिल रही है। जिले की हजारों महिलाओं का हीमोग्लोबिन स्तर कम समय में बेहतर हुआ है, जिससे मातृ व शिशु स्वास्थ्य मजबूत बन रहा है। आशा सहयोगनी और ANM की सक्रिय भूमिका से जरूरतमंद महिलाओं तक उपचार पहुंच रहा है। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
प्रदेश में दिन और रात के तापमान में काफी अंतर दर्ज किया जा रहा है। जहां सुबह शाम सर्दी का असर बना हुआ है, वहीं सूरज के तीखे तेवर दिन में हल्की गर्मी का एहसास करा रहे हैं। कई स्थानों पर दिन और रात के तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर बना हुआ है। बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। बाड़मेर में पारा सबसे ज्यादा 32.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। पाली, जोधपुर और जालौर में भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। सबसे कम 6.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा करौली, दौसा, चूरू, झुंझुनू और अलवर सहित कई स्थानों पर रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने और तापमान में बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 131वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 मई से 14 जून तक। इस चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना कार्य होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर दौरे पर, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ कुआलालंपुर में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। और प्रदेश में दिन और रात के तापमान में काफी अंतर, सीकर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री, वहीं बाड़मेर, पाली, जालौर और जोधपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।